તારીખ 16/11/1995 શ્રી મદ્રાસ ચંદ્ર પત્રાંક 569 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું મુંબઈમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 135
દુઃખ હોતા હૈ ક્લેશ હોતા હૈ ઇસ જ્ઞાન કા એસા પ્રભાવ હૈ વર્તમાન મેં સભી પ્રકાર કે સંયોગ વિયોગ સે अपने को भिन्न माने मुक्त अनुभव करता है उस आत्मज्ञान के कारण से वो अपने को भिन्न अनुभव करता है या मुक्त अनुभव करता है। सारा जगत एक स्वप्नवत दिखता है, जैसे स्वप्नों के पदार्थ का कोई मूल्य नहीं है, ऐसे आत्मज्ञानी की दृष्टि में से जगत का मूल्य चला जाता है। जब दृष्टि में से मूल्य चला गया फिर जगत का कोई सवाल नहीं है कि दुख सुख दुख का कारण बन सके जगत में किसी बात में। इसलिए इस आत्मज्ञान का जो मूल्य है वो एक ऐसा मूल्य है कि इसका किसी से नाप नहीं किया जाता, नापा नहीं जाता कि इसका कैसे मूल्य करे। ऐसा आत्मज्ञान करने का उपाय आत्मकल्याण का दृढ़ निर्धार करना यही है, उसको कहते हैं आत्मविचार। ऐसे विचार बिना, इस प्रकार के विचार बिना आत्मज्ञान उत्पन्न होना संभव नहीं है। और उस प्रकार का विचार विचार बल सहित उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि जीव और सत्संग में रहता है और असत प्रसंग में रस लेता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण मुमुक्षु के लिए कही गई है कि हमारे परिणाम 24 घंटों में असत संग में और असत प्रसंग में कितना रहता है। वही हमारे आत्मविचार को मारता है ऐसे परिणाम, और इसके फलस्वरूप आत्मज्ञान होने के परिस्थिति पैदा नहीं होती है, ऐसा बनता है। और सत्संग तथा असत प्रसंग से जीव का आत्मकल्याण का जो विचार बल है वो प्रवर्तता नहीं है, इसमें किंचित मात्र संशय नहीं है। यानी ये निशंक बात है, ये निशंक बात है कि हमारे असत्संग के परिणाम और असत प्रसंग में रस लेने वाले पर जो परिणाम है वही हमारे आत्मकल्याण के विचार को बल नहीं देता। जब बल नहीं मिलता तो आत्मज्ञान होने का कोई अवकाश नहीं रहता है। परिस्थिति साफ कर दी, हमको क्यों आत्मज्ञान नहीं होता है इसका यही कारण है, और कोई कारण नहीं है। हम उसको ठीक करें सत्संग के दौरान, सत्संग के कारण से तो आत्मज्ञान होना संभव है।
सत्संग का जो उदय रहना और उदय में वैसा भाव रहना दो में डिफरेंस
है।
असत प्रसंग और असत्संग का घेरा हो सकता है।
भाव के लिए हम स्वतंत्र है, असत्संग और असत प्रसंग पूर्व के प्रारंभ के कारण से रहेगा, क्योंकि हमने ऐसे ही परिणाम किए हैं भूतकाल में। संसार के परिणाम में हमने बहुत रस लिए हैं, इसलिए और सत्संग का ये योग रहेगा या परिस्थिति बनती रहेगी, फिर भी उसमें हमारे परिणाम कैसे रहना चाहिए उसके लिए हम स्वतंत्र है, उसके लिए हमको किसी का बंधन नहीं है। लेकिन हम उदय में घुस जाते हैं, ये हमारा दोष है। उसका भी एक उपाय बताया है कि आरंभ परिग्रह का अल्पत्व कर दो। अगर असत्संग और असत प्रसंग में रस नहीं लेना हो तो सत्संग बढ़ाओ पॉजिटिवली, नेगेटिवली आरंभ और परिग्रह का अल्पत्व। जैसे परिग्रह में तो जरूरत हमारी ज्यादा है, यही हमारा परिग्रह है, हमको वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए।
तो इसके बिना मेरा नहीं चल सकता, अगर ये भाव है तो वो
करता है। इसके बिना चल नहीं सकता है
इसलिए हमको चाहिए,
इसलिए चाहिए, और चल सकता है तो भी चाहिए, वो चाहिए वाली बात निकल जानी चाहिए। क्यों कि जितना चाहिए उतना विकल्प बढ़ेगा, जितना विकल्प बढ़ेगा उन पदार्थों के प्रति का, उतना ही हमारा आत्मविचार है इसका बल कमजोर होगा या बल नहीं पैदा होगा, ये बात होने वाली है। क्योंकि हमारा बल वहां खर्च होता है, जिस पदार्थ हमें चाहिए वहां हमारा बल का खर्च होता है, परिणाम का बल का वहां खर्चा होता है। तो एक जगह खर्च होगा, दूसरी जगह खर्च कहां से होगा, हमारे पास तो सीमित बल है, बहुत मर्यादित बल है, मुमुक्षु की भूमिका में इतना बल होता नहीं, पर होता तो स्थिर हो जाता आत्मा में, ये तो होता नहीं है। इसलिए परिग्रह जो कम करेगा वो आरंभ भी कम करेगा, जिसको परिग्रह ज्यादा उसको आरंभ भी ज्यादा, उसके लिए उसको टाइम देना पड़ेगा। जिसको परिग्रह ज्यादा चाहिए उसके लिए आरंभ करना ही पड़ेगा, इसके लिए समय देना पड़ेगा, समय और शक्ति दोनों का खर्च इसमें हो ही जाएगा। खर्च करे तो संचय होता है, बिना खर्च करे थोड़ी ना संचय होता है, संचय कैसे होता है, खर्च से तो संचय होता है, वो तो दोनों बात कनेक्टेड है, संबंधित है। क्या जरूरत, इसकी भी क्या जरूरत बताओ, इसके पीछे मकसद क्या है बताओ, क्या अभिप्राय है इसके पीछे। हम हमारे लिए खर्च नहीं करते, हम दूसरे के लिए खर्च कर लेते हैं।
किसी को कोई जरूरत की चीज हो पर सामने वाले में उतनी कैपेसिटी नहीं हो, पर अगर हम उसके लिए करके दे दें
तो वो तो दान हो गया, वो परिग्रह में थोड़ी नहीं जाता, वो तो दान हो गया।
उसके लिए तो उपाधि का पूजा तो माने
हाँ, इसलिए मैंने पूछा कि आपका अभिप्राय क्या है, इसके पीछे क्या अभिप्राय है, दूसरों के पीछे खर्च करने का हमारा अभिप्राय क्या है, क्या हमारे पास समय शक्ति फालतू है या दूसरे के लिए है, क्या बात है, हम क्यों ऐसा करते हैं, या हमारी कोई ऐसी प्रकृति है उसका हम पोषण करते हैं, या इसके पीछे हमारी अच्छाई बुराई नहीं हो गई अच्छा है, ऐसा कोई अभिप्राय है, बहुत सा कारण हो सकता है, कौन सा कारण है वो बताइए। हम दूसरे के काम कर देते हैं तो हमारी प्रतिष्ठा हमारी आदरू कीर्ति मान बढ़ सकता है, या हमारी कोई ऐसी प्रकृति हो, या हमारे कोई पर्सनल कोई लगाव हो, कोई भी कारण हो सकता है। एक आदमी सारा जगत का तो नहीं कर सकेगा। जगत में हीन संयोग वाले कितने कितने, इसकी गिनती नहीं कर सके। हम किसका करेंगे, किस किसका करेंगे, कितनी कैपेसिटी है हमारी, कितना समय है, कितनी शक्ति है, कितने पैसे हैं, क्या बात है, किन किन का करेंगे, और जिसका करेंगे इसका क्यों, किस कारण से करेंगे, और इसका ही करेंगे तो दूसरे का नहीं करेंगे, इसका क्या कारण है, बताओ क्या जवाब है इसका। तो उसमें कोई दम नहीं है। वास्तव में जिसको आत्म कल्याण करना है उसको तो उपयोग सभी जगह से समेट लेना पड़ता है, तभी आत्म उपयोग होता है, तभी आत्मज्ञान होता है। तो उपयोग कैसे समेटा जाए वो बात लक्ष्य में रहकर के हमारी सभी प्रकार की प्रवृत्ति होनी चाहिए। उसी को कहते हैं आरंभ का अल्पत्व, और आरंभ का अल्पत्व है तो परिग्रह का अल्पत्व तो अपने आप है। और हम दूसरे का कुछ करते हैं वो सत्प्रसंग है या असत प्रसंग है, ये बताओ।
दूसरे भी किसके लिए करते हैं, दूसरे भी किसके लिए करते हैं,
हाँ तो किसके लिए करते हैं, देखो
संसारी के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं
देखना, किस किसके लिए करते हैं। ये तो बात इंडिविजुअल होगी, फिर व्यक्तिगत होगी ना। जनरल बात वो है कि हमें हमारे आरंभ परिग्रह का अल्पत्व होगा तभी हमारा उपयोग इधर उधर ज्यादा भटकेगा नहीं, और तभी हम आत्मविचार बलवान रूप से कर पाएंगे और इसके फल में आत्मज्ञान भी कर पाएंगे। इसलिए आरंभ परिग्रह का अल्पत्व करने से असत प्रसंग और असत्संग का बल घटता है, उस परिणामों का बल घटने से आत्मविचार बलवान होता है, आत्मविचार बलवान होने से आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। वो तो सीधी साधी चेन है, आरंभ परिग्रह का अल्पत्व करने से असत प्रसंग का बल घटता है, सत्संग का आश्रय से असत्संग का बल घटता है। दो बात लिया, आरंभ परिग्रह का कम कर देना और सत्संग का ज्यादा करना, क्योंकि सत्संग में आत्मज्ञान के और आत्मस्वरूप के विचारों में रस लेने का प्रसंग बनता है, हमारी रुचि को पोषण मिलता है, इस प्रकार के आत्मरुचि को पुष्टि मिलती है। इसलिए सत्संग है वो आत्मभावना और आत्मरुचि बढ़ाने का या पैदा करने का एक प्रसंग बनता है। सत्संग के आश्रय से असत्संग का बल घटता है, यानी असत्संग के विषय में निरस्ता आती है या अरुचि पैदा होती है, और ये जरूरी है क्योंकि हमने नुकसान ही असत्संग में ही किया है। तो सत्संग को छोड़कर के जितने भी संग है वो असत्संग में जाता है, चाहे वो संग हमारे परिवार का हो या हमारे नात जात का हो, सगे संबंधी का हो, मित्र मंडल का हो, किसका भी हो, सत्संग को छोड़ करके जितना भी संग है वो असत्संग का है। तो सत्संग का आश्रय करने से, सत्संग में उपस्थित रहने से नहीं, बोल रखा देखो हम तो रोजाना सत्संग में शरीक होते हैं, हमारी उपस्थिति देख लीजिए, रेगुलरली आते हैं, ऐसा इतना नहीं लिखा है। हम आश्रय करते हैं सत्संग। मैंने जो सत्संग में विषय चलता है वो हमारा जीवन का आधार बनता है, हमारे परिणमन का वो आधार बनता है। तो जो असत प्रसंग है, असत्संग है, उसमें रस नहीं आएगा। सत्संग में रस आने से असत्संग का रस टूट जाएगा, और असत्संग में रस आने से सत्संग में रस आएगा नहीं। हर संप्रदाय में जितने लोग शामिल होते हैं उतने सत्संग में रस नहीं लेते हैं। 5-10% से ज्यादा नहीं सत्संग में आने वाले। हम हमारे सिटी के हिसाब से कहते हैं कि हमारे मंडल में जब वो स्वामी वात्सल्य का जीवन होता है, होता है ना पर्यवेक्षण के बाद एक दिन सब साथ में जीतते हैं, तो करीब 450-500 की संख्या में लोग खाना खाते हैं। करीब 100-125 घर हैं। और सत्संग में 50-60, 50 से 70, मैंने 60 का एवरेज गिन लो, कितने लोग उपस्थित रहते हैं, तो 10-12% से ज्यादा नहीं है। पीछे से तो उतना भी कोई सत्संग नहीं करते, तो मैं रहता हूं तो उतने लोग उपस्थित रहते हैं, बाद में तो इससे आधा भी नहीं रहते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी मैक्सिमम उपस्थिति है हमारे मंडल में, और जगह तो उतना भी नहीं है, जितनी संख्या है उसके 5% भी नहीं है, कभी 2-3%, 4%, 5% मैक्सिमम रहती उपस्थिति हर मंडलों में, अपने यहाँ थोड़ी ज्यादा है। वो दूसरे नीचे वालों के कमजोर बराबरी में, वास्तव में गिना जाए तो 90% की उपस्थिति होनी चाहिए, 10% को हम छोड़ दें, इसके जगह 90% को अनुपस्थिति रूप में छोड़ना पड़ता है। क्यों? कि लोगों को सत्संग में रस नहीं है। और किसी को भी पूछो कि आपको आत्मकल्याण करना है, हाँ करना है, क्यों नहीं करना है, कैसे होगा? पर सत्संग में रस, सत्संग का बल तो बहुत है, सत्संग में रस नहीं है। और ये जो 10-12% आते हैं उसमें से ऊपर ऊपर से चलने वाले 90%, एक तो संप्रदाय के 90% आते नहीं, आते हैं उसमें से 90% ऊपर से चलते हैं, गहराई में कोई जाते नहीं कि भी पीछे पड़ जाओ इसके। आत्मज्ञान होता होगा तो निर्वाण पद की प्राप्ति होगी, 3 लोक का नाथ हो जाएगा, इतनी बड़ी उपलब्धि है उसमें, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये बात खुली होने पर भी 90% तो ऊपर से चलते हैं, रस नहीं लेते हैं। आज सुन लिया, चला गया, कल आके फिर से सुनने को बैठ जाएगा। सारे दिन में क्या प्रयास किया, क्या पुरुषार्थ किया, कोई बात नहीं, उदय में घुस गए, घर पे गए, ऑफिस में गए, जहां भी गए, जो भी उदय आया सामने उसमें राग कर लिया, द्वेष कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, चलो। इसलिए इसको दुष्म काल कहते हैं, पंचम काल कहते हैं, कलयुग कहते हैं, यही कारण है इसका। इन्हें गिने लोग हजारों में से, सैकड़ों में से उंगली से गिन सके, 1, 2, 3, 4, 6 ऐसे लोग इस विषय की गहराई में जाते हैं, और उसमें भी पुरुषार्थ करने वाले कितने, तो साथ करके आगे बढ़ने वाले कितने हैं। ये धर्म दारिद्र चलता है। सत्संग का आश्रय कौन करता है? कैसे जो गहराई में जाता है, अपने परिणमन का परिणमन में रंग चढ़ता हो, रस आता हो, परिणमन बदलता हो, जीवन बदलता हो, तब तो कह सकते हैं कि सत्संग का आश्रय हुआ। और ऐसा आश्रय होगा तो और सत्संग का बल टूटेगा, और असत्संग का बल कम होने से आत्मविचार होने का अवकाश प्राप्त होता है, आत्मकल्याण का आत्मविचार का बल बढ़ने की जगह होती है, और आत्मविचार होने से आत्मज्ञान होता है। ये तो सीधी बात है, आत्मकल्याण का विचार होने से, निर्धार होने से, बलवान विचार होने से ही आत्मज्ञान होता है, और आत्मज्ञान होने से क्या फल मिलता है कि निज स्वभाव स्वरूप सर्व क्लेश और सर्व दुख से रहित ऐसा मोक्ष होता है। यह बात केवल सत्य है, यह बात केवल सत्य है। आगे लिखा कि असत प्रसंग से जीव का विचार बल नहीं चलेगा, वो निशंक है। यहां कहते हैं कि जिसको आत्मज्ञान हुआ उसका मोक्ष, कि जिस मोक्ष होने से जीव को किंचित मात्र दुख या क्लेश का अनुभव नहीं होता। ये बात केवल सत्य है, संपूर्ण सत्य है, उसमें तो कोई मतांतर होने की जगह नहीं है। जो जीव मोह निंद्रा में सोए हुए हैं, ये ऐब नहीं है। जो जीव मोह निंद्रा मैंने दर्शन मोह में पड़े हैं, ये संसारी है, और मुनि होकर होने पर भी ए मुनि है। अमुनि मैंने साधु होने पर भी साधु नहीं है। क्यों? कि दर्शन मोह में पड़े हैं, भाव निंद्रा है, वो मोह निंद्रा है, दर्शन मोह की निंद्रा है। मुनि तो निरंतर आत्मविचार से तो जागृत होता है, मुनि है तो निरंतर आत्मविचार से जागृत रहता है, और जो आत्मकल्याण के विचार में जागृत है वही मुनि है, ऐसा ले लो। जिसको आत्मजागृति आई वो मुनि है, या मुनि बनेगा, यही साधक बनेगा। प्रमादी को सर्वथा भय है, जो पुरुषार्थ नहीं करते, शिथिल रहते, उसका क्या होगा, किस गति में चला जाएगा, उसका भविष्य का कोई ठिकाना नहीं, उनको भय है। प्रमादी कौन होते हैं? पीछे इतना हो जाए, इतना रह जाए, इतना काम हो जाए, इतना हो जाए, बाद में बाद में सब प्रमाद है, उसको भय होगा, उसको भविष्य में क्या होगा इसका कोई ठिकाना, उसको तो कोई प्रतीति नहीं आएगी, कि मेरा भविष्य उज्जवल है। जिसको अंदर में पुरुषार्थ चलता है उसको प्रतीति आएगी, मेरा पुरुषार्थ मुझे जवाब देता है कि मेरी होनार है वो अच्छी है, मेरी होनार है वो अच्छी है। प्रमादी को सर्वथा भय है, अप्रमादी को किसी भी प्रकार से भय नहीं होता, ऐसा श्री जिनदेव ने कहा है। हम तो कुछ बातें भगवान के नाम से करेंगे, जिनेन्द्र ने ऐसा कहा है कि जो पुरुषार्थ करता है उसको कोई भय नहीं है, लेकिन बात समझता है, बात जानता है और पुरुषार्थ नहीं करता, उसका कोई ठिकाना नहीं है कि कहां जाएगा, तो उसको तो भय रहेगा। आलोक का भी भय रहेगा और परलोक का भी भय रहेगा। तो इसलिए कहा कि लोग जानकारी तो कर लेते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते। हमारे देश में धर्म की बहुत सी बातें प्रचलित है, अन्य देश में उतना धर्म के विषय में छेड़छाड़ नहीं है। हमारे यहाँ तो एक नाई भी बाल काटते काटते फिलोसॉफी करेगा, देखिएगा। हाँ, और फिलसफी के स्लोगन तो बहुत है हमारे यहाँ, दीवार दीवार पर दिखने मिलेगा छोटे छोटे गांव में, क्योंकि अध्यात्म विद्या का प्रधान देश है ये देश है, उसमें अध्यात्म विद्या शुरू से ही बहुत सालों से बहुत है और अच्छे अच्छे महात्मा, आध्यात्मिक महात्मा यहाँ पैदा हुए हैं, तो कुछ माहौल तो है। बात बाहर आती है, समझ में आती है थोड़ी या ज्यादा कुछ भी, लेकिन लोग पुरुषार्थ नहीं करते। तो कहते हैं कि सर्व पदार्थ का स्वरूप जानने का हेतु मात्र एक आत्मज्ञान करना यही है। कि जानकारी किस बात की, इसके पीछे हेतु क्या है, एक आत्मज्ञान करने का हेतु है। मैंने शास्त्र में सर्व पदार्थ के विषय में 12 अंग में बहुत ज्ञान भरा है, जितनी भी लौकिक विद्या भी निकली है ना वो जिनागम में से निकली है, क्योंकि सर्वज्ञ के सिवा कौन बता सकता है ये सब बातें, तो सर्वज्ञ के ज्ञान में सब बात आई, सब प्रसिद्ध हुई। लेकिन इस ज्ञान का प्रयोजन क्या, आत्मज्ञान करना यही प्रयोजन है, बाकी बिना प्रयोजन की बात में रस लेना चाहिए नहीं। सर्व पदार्थ के स्वरूप जानने का हेतु मात्र एक आत्मज्ञान करना यही है। यदि आत्मज्ञान नहीं न हुआ तो सर्व पदार्थ का ज्ञान का निष्फलपना है, जो भी जाना सब जाना सा फोक। क्यों, कि आत्मज्ञान के बिना आत्मशांति होने वाली नहीं, और जीव को कुछ भी जाना हो अशांति है तो क्या फायदा, जीव को शांति चाहिए ना आखिर में। इसलिए कितना भी कोई जानता हो अगर आत्मज्ञान इसके फल में नहीं आया तो ये सब जानना फोक है, निष्फल है, इससे कोई फायदा नहीं है। और जितना आत्मज्ञान होता है उतनी आत्म समाधि प्रकट होती है। मैंने तारतम्य विशेष से जितना आत्मज्ञान का स्वसंवेदन का तारतम्य बढ़ता है उतनी शांति बढ़ती है। आत्म समाधि में क्या होता है, शांति होती है तो उतनी शांति मिलती है। जितना आत्मज्ञान में ससंवेदन विशेष उतने आत्म शांति भी विशेष। इसलिए अब एक बहुत सुंदर बात करते हैं कि कोई भी तथारूप योग को प्राप्त करके जीव को एक क्षण भी अंतर्भेद जागृति हो जाए तो ऐसे मुमुक्षु जीव को मोक्ष विशेष दूर नहीं है। ये बहुत प्रेरणा से बात किया है कि जीव धर्म के क्षेत्र में आया और उसको कोई इस प्रकार का योग हो गया कि ऐसे योग होने से, योगानुयोग होने से जीव को अंतर में जागृति हो गई, अंतर में जागृति आ गई, एक तीर लग गया, एक ऐसी जगह पे तीर लग गया, एक मर्म स्थान में तीर लग गया और वो आत्मज्ञान के लिए जागृत हो गया, आत्म कल्याण के लिए जागृत हो गया, तो ऐसे जीव को मोक्ष होना में ज्यादा देर लगने वाली नहीं है। ये इसलिए पूर्वकाल में ले लेता है, सिर्फ उसको सही लाइन मिल जानी चाहिए। ये दुर्लभ है, मोक्ष इतना दुर्लभ नहीं है, लाइन मिलना दुर्लभ है, लाइन मिल जाने से मोक्ष मिलना इतना दुर्लभ नहीं है, वो बात है। तो ये तथारूप योग किस प्रकार का होता है ये बात थोड़ा गोल गोल शब्द में कहा है, यानी गुड भाषा में कहा है। ज्ञानी कभी कभी बात को खोल करके नहीं कहते हैं और कभी कभी खोल करके कहते हैं, दोनों प्रकार मानता है और दोनों प्रकार अच्छाई के लिए ही होता है। खोल करके कहते हैं तो भी मुमुक्षु के आत्म कल्याण के लिए कहते हैं और नहीं खोलते हैं तो भी मुमुक्षु के आत्म कल्याण के लिए नहीं खोलते हैं, उसमें अभिप्राय क्या होता है? नहीं खोलने में क्या बात है? बात को मुट्ठी में रखने से क्या फायदा है? तो वो बात है उसमें कि जिज्ञासा को बढ़ाना हो जब तो वो बात को खोल करके नहीं बताएंगे तो जिज्ञासा तीव्र होगी। जब जिज्ञासा तीव्र होती है तब वो बात स्थान पाने का वैचारिक भूमिका में अवकाश होता है, इसलिए बात को खोलते भी नहीं कभी कभी। ये तथारूप योग का बात ऐसा ही है कुछ कि जीव को आत्म कल्याण की तीव्र भावना जगे कि मुझे मेरा आत्म कल्याण करना है और उसके कारण से उसको इस बात की सूझ आए कि आत्मज्ञानी के बिना तो कोई आत्मज्ञान करा सकेगा नहीं, आत्मज्ञान के लिए तो आत्मज्ञानी चाहिए चाहिए और चाहिए, क्योंकि अनादि से अनजानी बात है और इसके लिए उसको आत्मज्ञानी की आवश्यकता महसूस हो और उस आवश्यकता तीव्र रूप से महसूस हो और उसी काल में उसको सत्पुरुष का, ज्ञानी पुरुष का, आत्मज्ञानी का योग बैठ जाए, बस उसको अंतर्भेद जागृति हो जाएगी। फिर कि किसी जीव को, ये एक सामान्य बुद्धि का विषय है, कोई ज्यादा बुद्धि का इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको रोग होता है उसको डॉक्टर के पास गए बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दवाइयां भी बहुत मिलती है मेडिकल स्टोर में और मेडिकल बुक्स भी बाजार में बहुत मिलती है, लेकिन डॉक्टर के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सामान्य रोग में भी ये बात है क्या? सामान्य रोग में भी यही बात है। विशेष बड़ा रोग हो तो उसमें तो कहने की जरूरत नहीं है कि इस रोग का एक्सपर्ट हो वहां जाना पड़ेगा, जैसे हार्ट डिजीज है, कैंसर है, कि उसका एक्सपर्ट हो वहां जाना पड़ेगा, वो समझाने की जरूरत नहीं है किसी को भी। ऐसे ये भव रोग है वो अनादिका है, और बहुत प्रकार के धर्म साधन करने पर भी मिटा नहीं है। ग्रंथ भी पढ़ चुके हैं हम लोग और कई प्रकार के प्रयोग भी कर चुके हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष के चरणारविंद का आश्रय नहीं किया। तो जो सामान्य बुद्धि होती है गंवार को भी उतना भी प्रयोग नहीं हुआ है, बुद्धिमान को भी, तो वो बात रह गई है। अब जिसको परिभ्रमण से छूटना है और छूटने की आवश्यकता अंतर से बराबर समझ में आई है कि परिभ्रमण से नहीं छूटेंगे, जिसका हिसाब नहीं है इतना दुख पाएंगे, कितना दुख पाएंगे, जिसका कोई हिसाब नहीं है इतना दुख आ जाएगा, आ पड़ेगा। और देखते हैं संसार में जीव कितने दुखी हैं। अरे कौन सुखी है, दुखी की क्या बात करते हैं, सुखी कौन है, सब दुखी ही दुखी है, सुख के पीछे दौड़ते हैं लेकिन किसी को सुख मिलता नहीं। इस परिस्थिति से बचने के लिए अगर इतनी सूझ आ जाए कि मुझे आत्मज्ञानी का शरण लेना है, और इसकी आवश्यकता उनको लगे और उसकी खोज चले और उसको मिल जाए, क्योंकि मुफ्त में मिलता है, इसकी कोई कीमत नहीं है। कई लोगों को क्या होता है कि कोई ज्ञानी के पुण्योदय इतना होता है कि प्रसिद्ध हो जाते हैं, बहुत प्रसिद्धि होती है तो हजारों लोग आने लगते हैं इनके संपर्क में। आते तो है हजारों लोग, लाखों लोग भी आ सकते हैं, लेकिन वो पुण्य योग है वो खत्म हो जाता है अगर इसका लाभ नहीं लेता, आत्मज्ञान प्राप्त करने तक इसका संग नहीं करता, उसके चरण में नहीं बैठता, तो आत्मज्ञान होता नहीं, तो पुण्य का जो योग है वो अयोग होकर के खत्म होता है, निष्फल होता है। और ऐसा आनंदवार बना है, ऐसा आनंदवार बना है कि आत्मज्ञानी मिले हैं हमको, लेकिन हमने आत्मज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं की है। अरे आत्मज्ञान की प्राप्ति तो नहीं की, सच्ची मुमुक्षुता की भी प्राप्ति नहीं की कभी। एक बार भी सच्ची मुमुक्षुता आ जाए ना तो बात दूसरी बनती है। तो ये तथारूप योग जो है वो इस प्रकार का होता है कि सच्ची आवश्यकता लगे, प्रत्यक्ष सत्पुरुष के संग की और उसका संग मिले। उपादान में इस प्रकार की तीव्रता है और निमित्त मिल जाए, ऐसा कोई तथारूप योग होने पर, प्राप्त होने पर जीव को एक क्षण, किसी भी एक क्षण में अंतर्भेद जागृति हो, संसार के परिणति का भेद हो जाए, छेद हो जाए, जीव में एक संसार परिणति चलती है, उपरिणति के वशात उनको आत्म जागृति नहीं आती है, संसार की जागृति रहती है। संसार परिणति से क्या होता है कि संसार में वो जागृत है, संसार में जहां भी लाभ नुकसान का सवाल पैदा होता है वहां उतना वो जागृत है, पूरा पूरा जागृत है। आर्थिक लाभ नुकसान किसी को समझाना नहीं पड़ता है। एक चना मुरमुरा कुरमुरा बेचने वाला भी जिसमें पैकिंग करता है उसका हिसाब रखता है, तो मुझे इतना पस्ती खरीदने करना पड़ता है और इतने दूरी लगानी पड़ती है, इसके लिए मुझे खर्च होता है, करता है कि नहीं करता है? हम लोग भी व्यापार में सब गिनती करते कि नहीं करते, ओवरहेड कितना, हाँ, सीधा खर्चा उतना और ओवरहेड उतना। वो परिणति संसार की जो है, जिसमें संसार के लाभ नुकसान की जागृति रहती है, उसका छेद हो करके, अंदर में उसका छेद हो करके आत्म जागृति आ जाए, आत्मा की शांति है, शांति के विषय में जागृति आ जाए, तो किसी भी कीमत पे वो आत्म शांति को छोड़ेगा नहीं, और किसी भी कीमत में वो उसको आत्मा की अशांति पोसाएगी नहीं, कितनी भी लालच मिले हमको नहीं चाहिए, हमारी शांति को हमको खोना नहीं है, ये बात बनेगी। और आत्म शांति का जो रहस्य है उसका पता लग जाएगा कि कैसे प्राप्त होती है। ऐसी एक परिस्थिति आती है, ऐसा योग बनता है तो ऐसी एक परिस्थिति आती है जिसको कहते हैं अंतर्भेद जागृति। सावधानी, अपने आत्मकल्याण के विषय में सावधानी आती है, वो सावधानी आने से एक प्रतीति विश्वास पैदा होता है मुमुक्षु में कि अब मेरा मोक्ष अवश्य होने वाला है, अल्पकाल में होने वाला है, अब मेरा मोक्ष दूर नहीं है। अंदर से ये बात आती है और वो बात अंदर से आती है इसका ज्ञानी पुरुषों ने मुमुक्षु की भूमिका में अनुभव किया है, इसलिए वो बात कही है। गुरुदेव इस भाषा में कहते थे, देखिए ये ऐसी बात है आत्मा का कल्याण की कि रुचि से अगर सुने ना तो उसको ये बात सुनते ही अंदर में से मोक्ष का भणकार आएगा। मुमुक्षु की भूमिका में मोक्ष का भणकार आएगा। भणकार को हिंदी में क्या कहते हैं? हम मोक्ष की आवाज आएगी, भणकारी कहते हैं। अभी भले आत्मज्ञान नहीं होना हुआ लेकिन ये चीज ऐसी पावरफुल है, आत्मज्ञान का तो कहना ही क्या, उसकी तो मुक्ति हो ही गई, समझ लो सही मुक्त है वह। समझसार में कहते हैं ये सही मुक्त है वह। अमरचंद्र आचार्य ने एक श्लोक में वो बात किया कि आत्मज्ञान हुआ तो उसकी मुक्ति हो गई। तो मुमुक्षु की भूमिका में भी विश्वास आता है, अंदर से विश्वास आता है जब जागृति आती है। तो यहां तक तो आ जाओ तो, लेकिन कोई तथारूप योग प्राप्त करके ये होता है, वैसे होता नहीं है। थोड़ी उपादान की भी तैयारी चाहिए और निमित्त तो स्वयं ही मिलता है, लेकिन अपने को उसके आवश्यकता महसूस होनी चाहिए। आवश्यकता महसूस होने से उसका मूल्यांकन होता है, वरना योग तो होता है मुफ्त में, पुण्य योग है वो तो मुफ्त का ही है, पुण्य का क्या कीमत है, और उसका मूल्यांकन नहीं होता है। जैसे मुफ्त में मिली हुई चीज का मूल्य नहीं होता और परिश्रम से मिली हुई चीज का मूल्य होता है, ऐसे ही ज्ञानियों का योग होता है, लेकिन योग को मूल्य नहीं होता तो योग बेकार जाता है। इस प्रकार से इस एक अमूल्य बात को यहाँ कृपालु देव ने रख दिया है। और अन्य परिणाम में जितनी तादात्म्य वृत्ति है या अन्य परिणाम में जितनी जागृति है, जितना जीव रस लेता है उतना जीव से मोक्ष दूर है। क्यों? कि जितना अन्य परिणाम में रस वाली वृत्ति है वही बंधन है, और जितना रस तीव्र उतना बंधन भी तीव्र, बंधन तीव्र तो मोक्ष दूर, क्योंकि तो बंधन और मोक्ष तो परस्पर विरुद्ध है, प्रतिपक्ष में है। इसलिए जीव को चाहिए कि वो अन्य परिणाम में तीव्र रस से परिणमन नहीं करे, कभी भी उग्र होकर के परिणमन नहीं करे, उग्र रस से परिणमन नहीं करे। परिणाम तो आएंगे, जहां तक आत्मज्ञान नहीं हुआ है अन्य परिणाम आएंगे। अरे आत्मज्ञानी को भी आता है लेकिन रस नहीं आता है उसको। तो अन्य परिणाम में जितनी तदात्म वृत्ति है, आत्म वृत्ति, तद मैंने उस परिणाम, आत्म मैंने अभेद रूप एकत्व रूप, ऐसी वृत्ति मैंने परिणति परिणमन हो जाता है, उसमें तीव्र रस रहता है होता है, तभी ऐसा होता है। और यही बंध का स्वरूप है, यही भाव बंध का स्वरूप है। और ये भावबंध से मोक्ष दूर जाता है, उतना मोक्ष विशेष दूर है। भाव से समय सार में बंध अधिकार है, उसमें वही बात दिया है, रागोद्गार महारसेन, राग का रस है वही बंध तत्व है। मैंने राग का जो चिकनापन है वही बंध तत्व है। परिणाम के जितने चिकने होते हैं राग विष मोह के, वही बंध तत्व है, और कोई बंध तत्व तो है ही नहीं। द्रव्य बंध को कर्म बंध को बंध नहीं कहा है, राग को भी बंध नहीं कहा, राग रस को बंध तत्व तो कहा है। और जीव वहां बंधता है, अनंत शक्तिवान ऐसा जीव पदार्थ वहां राग रस में बंध जाता है, जैसा भौरा फूल में बन जाता है वैसा मर जाता है वो। हाँ, फिर उनको कोई मिल चीज हवा मिलती नहीं है तो मर जाता है, ऐसी बात होती है। इसलिए अन्य परिणाम में जितनी तादात्म्य वृत्ति है उतना मोक्ष दूर है। यदि कोई आत्मयोग बने तो यह मनुष्यपणा का मूल्य किसी भी प्रकार से न हो सके इतना है। यदि कोई आत्मयोग बने तो, आत्मकल्याण का ऐसा तथारूप योग बन जाए तो ये मनुष्य भव का मूल्य नहीं कर सकते, वरना ये मनुष्य भव का मूल्य एक फूटी हुई कोड़े के समान है, बहुत से जन्मते हैं और बहुत से मर जाते हैं, लेकिन यहाँ आत्म कल्याण होना, आत्मयोग होने का अवकाश है। अगर ये चांस नहीं मिला और वैसे ही आयु व्यतीत हो गया मनुष्य, तो उसका कोई मूल्य नहीं है। और अनंत बार मनुष्य भव हुआ, लेकिन एक बार भी आत्मयोग, आत्म कल्याण का योग बैठ गया, ये मनुष्य भव की कीमत कोई भी टर्म में हो सकती नहीं, ऐसा होता है। तो इसी बात को लेकर के जब इस मनुष्य पर्याय में हम है, तो हमें ऐसा कोई आत्मयोग बैठ जाए, इसके लिए हमारी कोई मानसिक तैयारी होनी चाहिए। ये योजना प्रश्न से वो बात निकलता है। और भी पत्र का सेशन काफी बाकी है, सबके साथ जाएंगे।
संता